हरे कृष्णा।
अभी हम लोग सब यहाँ पर
पेड़ कदम पे आए हैं। पेड़ कदम ये आशीष्वर महादेव के पास में है, नंदगांव में है। भगवान की लीला स्थली है, बहुत पवित्र जगह है। और आज का दिन जो है वो शिवरात्रि का दिन है। आज शिव पार्वती का विवाह का दिन है, मैरिज एनिवर्सरी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, विवाह की सालगिरह शिव जी की और पार्वती जी की। इतना पवित्र दिन है आज, शिवजी महाराज की कृपा से भगवान की शुद्ध भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पवित्र दिन पर आज के 20 फरवरी के दिन आप सबका पेड़ कदम्ब में स्वागत है।
हरी बोल।
तो ये बहुत अद्भुत और रमणीक स्थान है। मुंबई, दिल्ली, बिहार, पटना में लाखों रुपए में देंगे ना किराया, तो ऐसा माहौल पैदा नहीं कर सकते आप। कर सकते क्या? तो आप डेकोरेटर को बोलोगे कि हमको ऐसा बना दो, हमारा शादी में हमको ऐसा चाहिए, नहीं बन सकता है। ये ठाकुर जी का धाम है, इसके अंदर जो वृक्ष है ना, ये पीलू के वृक्ष है। सब इनकी खासियत ऐसी है कि ये वृक्ष जो है जब भी उगता है ना, तो उगते ही जमीन पिघल जाता है। देखो उसकी शाखा कैसे जा रही है, शाखा जमीन को छूते हुए जा रही है। ये नम्रता का प्रतीक है। ये ब्रज में कैसे रहना चाहिए वो दिखा रहा है आपको। ब्रज में एकदम नम्र बन के रहना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में झुके रहना चाहिए। ये सब झुके हुए हैं, सब ये आकाश की ओर नहीं बढ़ते हैं हाइट से, ये झुक के जाते हैं। ये निधि वन में, प्रेम वो सेवा कुंज में, वृंदावन में, यहां पर ये सब ऐसे पेड़ हैं जो झुक के जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। अच्छा, सुंदर वातावरण बना के रखा है। ये जो खंभे बनाए ना, वो केवल उनके सपोर्ट के लिए बनाए है ना बाबा। हाँ, लेकिन ये जो शोभा है ये कहीं आप खरीद नहीं सकते, शोभा ऐसे यहीं पर आके मिलेगी आपको। तो ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा बहुत सुंदर लीला स्थली कुंड जो है सब यहाँ वहां पर प्रस्तुत किया हमारे लिए। तो ये जो सबसे पहली कथा हम बताएंगे, ये रूप गोस्वामी की भजन कुटी है। श्री कृष्ण भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान ने स्वयं राधा रानी का भाव क्या है वो समझने का प्रयास किया, और उस भाव में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया। तो उस अवतार का नाम है चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। स्वयं भगवान जो है वो अपने ही भक्त बनकर आए। उनकी भक्ति कैसे की जाती है ये उनसे बड़ा कौन बता सकता है, इसलिए वो खुद भक्त बनकर उन्होंने दिखाया कि कैसे भक्ति की जाती है। तो वो महाप्रभु चैतन्य ने 2 महीना वृंदावन में वास किया, और पूरे भारत भर में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब जगह हरिनाम संकीर्तन करके सब इंसानों को, जानवरों को, पेड़ों को, पौधों को पागल बना दिया। यहां तक कि पेड़ भी कांपते थे ऐसे उनके कीर्तन के अंदर, इतना शक्ति था उनके कीर्तन में। सब पेड़ों में से मधु निकलता था, पत्तों में से। सभी जीवों को, जितने भी ये सब जीव है ना, ये पेड़ के शरीर में, हम इंसान के शरीर में है, कोई मोर के शरीर में है, कोई बंदर के शरीर में है, कोई हाथी के शरीर में है, सभी जानवरों को उन्होंने मदहोश कर दिया इन एक्सटेसी। तो वो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट किया जो लुप्त हो चुका था, और फिर अपने शिष्यों को जो 6 गोस्वामी हैं, उनके शिष्य हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप ब्रज की जो लुप्त हो गई स्थलियां हैं उसको दोबारा प्रकट करो। तो रूप गोस्वामी जी जो इनका भजन कुटी यहां पर है वो उनके प्रधान शिष्य हैं। हमारा संप्रदाय जो है ना बाबा जी, हम सब जो हैं ये गौड़ीय संप्रदाय के हैं। गौड़ीय मतलब गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय में हम लोग। तो हमारे संप्रदाय के लोगों को रूपानुगा कहते हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी कहते हैं, फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं, फिर जीव गोस्वामी उनके भतीजे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी ने ब्रज में आके निवास किया, सब कुछ धन दौलत को, इज्जत को, पोजीशन को, अधिकार को सब त्याग करके फकीर बनकर पेड़ के नीचे रहने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए यहां पर आए हो। लेकिन हृदय में सबसे बड़ी दौलत जो है भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति प्रेम वो लेकर वो यहाँ पर रहे। सबसे बड़ी दौलत भगवान का प्रेम है, उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया की दौलत छोड़ दिया उन्होंने और अमीर होते हुए भी फकीर बनकर यहाँ पर रहे। तो गौरव गोस्वामी जी ने यहाँ पर निवास किया है, ये डेढ़ कदम में यहाँ पर है, इसलिए बाद में बताएंगे, लेकिन डेढ़ कदम में बहुत पवित्र स्थान है, राधा कृष्ण के गौचारण स्थली है और यहाँ पर रूप गोस्वामी ने अपना एकांत भजन किया है। वे हम लोग आए थोड़ा भीड़ हो रहा है, आवाज हो रही है, लेकिन वैसे आप आएंगे ना आपको लगे शांत जगह है, बहुत शांत जगह, एकांत है बहुत यहाँ पर। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने अपनी कुटिया बनाकर भजन किया है और महाप्रभु चैतन्य ने उनको आदेश दिया था सभी गोस्वामियों को कि आप ब्रज के लुप्त स्थान प्रकट करो, साथ साथ भक्ति की जो विधि है, भक्ति कैसे करना चाहिए उसको लिखो ग्रंथ के रूप में ताकि लोग आगे पढ़ सके, और कहा कि जो भगवान के विग्रह हैं उनको पुनः स्थापन करो और उनकी पूजा करने की जो विधि है उसको भी ग्रंथ लिखकर लोगों को सिखाओ, लोगों को ट्रेनिंग दे दो ठाकुर जी का सेवा कैसे करना चाहिए। तो एकांत में आकर ग्रंथ लिखने के लिए रूप गोस्वामी जी यहां पर आए। रूप गोस्वामी जी रूप मंजीरे के अवतार हैं, भगवान की अष्ट सखियां हैं, उसमें ललिता देवी है, ललिता देवी की प्रधान असिस्टेंट जो है सेविका उनके सहायिका वो रूप मंजरी है, रूप मंजरी जो है वो बाकी सभी सखियों को अष्ट सखियों की सेवा में लगाते हैं और उनके द्वारा सेवा करके अष्ट सखियां कृष्ण की सेवा करती हैं। तो रूप मंजरी ये अवतार लेकर आती है चैतन्य महाप्रभु के अवतार में रूप मंजरी के रूप में और नहीं रूप गोस्वामी के रूप में। तो यहां पर बैठकर उन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव और भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत और उत्कुलिका बल्लरी पद्यावली भजन संग्रह बहुत सारे ग्रंथ लिखे यहाँ पर बैठ। और जब कोई लिखता है ना ग्रंथ ठाकुर जी का, वो ठाकुर जी ग्रंथ लिखते समय बहुत एकाग्र होना पड़ता है, एकांत में शांत रहकर उसको लिखना पड़ता है। तो बहुत ही एकांत होकर बहुत ही प्रेम से अपना ध्यान लगाकर जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दशाश्वमेध घाट पर सुनाया था, 10 दिन तक उनको उपदेश किया था भगवान के सेवा के बारे में, उनको 10 दिन बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने 1-to-1 उपदेश किया था। वो सारा ज्ञान जो उन्होंने सुना था वो अलग अलग किताब के रूप में उन्होंने लिखा और ये स्थली है वो, यहाँ पर ये सारे ग्रंथ जो हैं प्रकट हो गए। भगवान राधा कृष्ण के बारे में जो रहस्य है उनके भक्ति का, सारे रस का अर्थ क्या है, शांत रस क्या है, दास्य रस क्या है, वात्सल्य रस क्या है, सख्य रस क्या है, वो सभी रसों का उन्होंने विवरण किया। राधा कृष्ण का प्रेम क्या है उसके बारे में समझाया। तो ये बहुत उत्कृष्ट स्थली है। तो यहां पर रूप गोस्वामी जी भजन कर रहे थे तो उनके बड़े भाई जो हैं सनातन गोस्वामी, उनका जन्मदिन था, उनको लगा कि मेरे बड़े भाई का जन्मदिन में कुछ बनाना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। तो विचार कर ही रहे थे, वो तो फकीर है, उनके पास तो कोई धन नहीं है। तो एक कन्या यहाँ पर आती है, सब लोग सुन रहे हैं ना, बाकी लोग कहाँ गए, सब लोग आधे लोग कहाँ गए, सब लोग ठीक है, ब्रेकफास्ट अभी जल्दी जल्दी करना चाहिए। एनीवेज ये बहुत सुंदर कहानी है इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ कि आप लोग आ जाओ। तो यहाँ पर एक सुंदर कन्या आई, उस कन्या ने अपने सर पर भी टोकरी धारण किया था और वो टोकरी के अंदर चावल दूध शक्कर इलायची मेवा सब साधन लेकर वो आई और उसने कहा कि मैया ने भेजा है आपकी सेवा में। तो क्या है उसमें, तो खीर बनाने का साहित्य है सब। तो रूप गोस्वामी कहते हैं मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो व्यस्त हूं भजन में, तुम ही बना लो उसको। तो वो कन्या ने यहां पर खीर बनवाई बहुत सुंदर और फिर भोग लगाया भगवान को उसका। उसमें सनातन गोस्वामी आए और सनातन गोस्वामी जब आए तभी भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उन्होंने अपने बड़े भाई को ये खीर खिलाई और खुद भी खाया। जब ही जैसे ही उन्होंने खीर का आस्वादन किया, खीर को ग्रहण किया, तो उनके आंखों से आंसू आने लगे, शरीर के रोमांच हो गए, गदगद हो गए, सब लोग कांपने लगे प्रेम से। इतना प्रेम का अनुभव हुआ उनको हृदय में वो खीर खाते हुए। एक तो दिव्य कोई आस व्यंजन खा रहा ऐसा अनुभव हुआ, और हृदय में भगवान के लिए बहुत प्रेम प्रकट हो गया उनके। तो सनातन गोस्वामी को मन में प्रश्न आया कि अरे रूपा ये कहां से आई खीर तुमने, तो दिव्य खीर खाने का अनुभव हो रहा है इससे। तो एक कन्या आई थी यहां पर, और वो कन्या ने यहां पर आके बनवाया, और कैसे थी कन्या वो, तो उन्होंने वर्णन किया उसका। अरे रूपा ये तो राधा रानी थी स्वयं, राधा रानी स्वयं तुमको आके, तुमने उसके हाथ से खीर बनाया, उससे सेवा लिया, तुम तो राधा रानी की सेवा करने के लिए यहां पर आए हो। तो बड़ा दुख हुआ दोनों को कि अरे राधा रानी के द्वारा बनाया हुआ उनकी सेवा लेकर उनका खीर खाया। लेकिन उनको साथ साथ दुख भी हो रहा था और साथ साथ आनंद भी हो रहा था, और वो खीर खाने को अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, वो खीर खाते जा रहे थे और प्रशंसा भी कर रहे थे। इतना दिव्य आनंद था उसके अंदर कि वो खीर खाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। दे कुड नॉट स्टॉप ईटिंग द खीर, एट द सेम टाइम दे वर रिपेंटिंग, अरे व्हाई वी टुक सर्विस फ्रॉम राधा रानी, दे वर स्टिल एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग। ऐसा राधा रानी अपने भक्त की सेवा करने के लिए यहां पर आती। रूप गोस्वामी इतने महान भक्त हैं। ये भक्त और भगवान के अंदर ना सेवा करने की एक होती कंपटीशन होती है। भक्त जो है भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान अपने भक्त की सेवा करने का प्रयास। अर्जुन कितने भक्त थे, भगवान के बड़े भक्त थे वो, और अपने बड़े इतने भक्त के लिए भगवान क्या बने, शूद्र बने। लॉर्ड कृष्णा बिकेम शूद्र फॉर हिज डिवोटी, सारथी बने उसके, रथ चलाया। भक्त के प्रेम के लिए क्या नहीं करते हो, भक्त न संग तुमने कहा ना कि गजराज के लिए भाग के आए हो वैकुंठ से बचाने के लिए, ध्रुव जी के लिए आए, प्रहलाद के लिए भाग के आए, नरसिंह भगवान बन के, अनंत कहानियां ऐसे। तो जितना भक्त भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, वैसे भगवान भी अपने आप को सेवक मानते हैं। सेवा धर्म सबके लिए है, भगवान के लिए भी है। भक्त भगवान की सेवा धर्म कर अपनाता है, और भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए अपने आप को जोड़ देते हैं। तो सेवा जो है वो हर जीव का स्थायी भाव है, इट इज द एसेंशियल बेसिक नेचर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज टू सर्व। विदाउट सर्विस वी कांट एग्जिस्ट। और भगवान भी परम आत्मा है ना, परम परम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी वो सेवा को नहीं छोड़ते, वो भी हमेशा सेवा में लगे रहते। यहां पर राधा रानी ने स्वयं जो कृष्ण स्वामिनी है, उन्होंने आकर रूप गोस्वामी का सेवा किया, ऐसे पवित्र से। इसलिए हम लोग सबसे पहले आकर रूप गोस्वामी को यहां वंदन करते हैं, क्योंकि इस जगह में अगर हमको कुछ समझना है तो यहां के जो आचार्य है उनकी कृपा के बिना क्या समझ सकते हैं। रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति, तबे हिमा भुजा बोसे युगल प्रीति। जब हम रूप गोस्वामी जैसे गोस्वामियों का चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे, तभी हमको राधा कृष्ण की जुगल प्रीति जो है उसको समझ सकेंगे हम। ये उनके कृपा का सार है। सारा जो रहस्य है प्रीति का, वो चैतन्य महाप्रभु ने इन छह गोस्वामियों के हृदय में एस्टैब्लिश किया। श्री चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश द सीक्रेट्स ऑफ लव ऑफ राधा एंड कृष्णा इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द गोस्वामीज। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर रहस्य जानना है तो इनके चरणों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बोलो कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। इनके चरणों की शरण ग्रहण करेंगे तो राधा कृष्ण के प्रेम का रहस्य प्रकट हो जाएगा। सो वी टेक शेल्टर हियर एट द लोटस फीट ऑफ रूप गोस्वामी, अटरली बेग फॉर द मर्सी ऑफ रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती स्वपदांतिकम। हे रूप गोस्वामी, आपने महाप्रभु चैतन्य के मनोभिष्टम यानी कि मन के अभिष्ट के तरह उनकी जो इच्छा थी मन में, उसके अनुसार आपने यहां पर श्री वृंदावन धाम को पुनः स्थापन दिया। यू एस्टैब्लिश्ड श्री वृंदावन धाम भूतले, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, इस भूमि पर भू के तल पर आपने श्री वृंदावन धाम को पुनः स्थापित किया, पुनः प्रकट किया। स्वयं रूप कथा मह्यम, कभी आप मुझ पर कृपा करोगे। ददाति स्वपदांतिकम, कब मुझ पर कृपा करके आप अपने चरणों में पदांतिकम आप मुझे स्थान दोगे। वेन यू विल गिव मी शेल्टर एट योर लोटस फीट, ओ रूप गोस्वामी। who has established Vrindavan Dham as per the desires of the mind of Chaitanya Mahaprabhu. ऐसे प्रार्थना करते हैं इन गोस्वामियों की कृपा के बिना हम ब्रज में सेवा नहीं कर सकते जब इनकी कृपा होगी तो ब्रज में कुछ सेवा कर सकते ब्रज का जो रहस्य है वो समझ सकते हैं प्रभु गोस्वामी बड़े श्रेष्ठ आचार्य हैं इन्होंने राधा गोविंद जी को प्रकट किया वृंदावन धाम हाँ योग पीठ के अंदर एक सुरभि गाय थी वो हमेशा दूध दिया करती थी तो ग्वाले ने उसको मारने का प्रयास किया तो समझ में आया कि वो आकर सब दूध वहां पर छोड़ देती है तो रूप गोस्वामी के स्वप्न में आए गोविंद जी उन्होंने कहा कि मैं इस योगपीठ के पत्थर के अंदर हूं मुझे निकालो तो रूप गोस्वामी जी जैसे माधवेंद्रपुरी जी गए थे ना उसे वो भी गए ब्रजवासियों की सहायता से गोविंद जी का विग्रह उन्होंने प्रकट किया और वृंदावन में स्थापन किया फिर मान सिंह आया वो अकबर का सेनापति था क्षत्रिय था वो राजपूत रूप गोस्वामी का शिष्य बना बड़ा प्रभावित हो गया बड़ा धनवान था वो उसने रूप गोस्वामी से कहा कि हमको कुछ सेवा दो रूप गोस्वामी ने कहा कि हमारी क्या सेवा है कुछ सेवा नहीं हम कुछ सन्यासी हैं आप गोविंद जी के लिए मंदिर बनाओ तो मान सिंह ने फिर गोविंद जी को मंदिर बनाना आरंभ किया तब रूप गोस्वामी फिर ब्रज भ्रमण के लिए निकल गए अपना स्थान जीव गोस्वामी के मंदिर में बनाया राधा दामोदर मंदिर में भी बनाया और ब्रज में भ्रमण किया उन्होंने पहले भी किया बाद में भी किया फिर उनके जाने के बाद में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और वो 7 मंदिर का मंदिर बना उसको औरंगजेब ने तोड़ दिया 5 मंजिल तोड़ दिया 2 मंजिल रख राजा को जो दिखाई पड़ता है वो 2 मंजिल है खाली लेकिन वैसे 7 मंजिल थी आगरा तक उसका दीपक दिखाई पड़ता था इतना बड़ा मंदिर था वो भव्य और एक पत्थर पर भगवान की लीला पत्थर में बनी हुई थी सुंदर वो भी उसको तोड़ डाला उसने फिर गोविंद जी को राधा गोविंद जी को फिर उस मंदिर से निकालकर जयपुर ले गया लेके गए जयपुर में अभी मूल विग्रह जो है गोविंद जी के जो प्रकट हुए थे वो अभी जयपुर में है राजपूत लोग उनकी सेवा कर रहे तो ऐसा ही स्थान है बहुत पवित्र स्थान है भजन करने के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुकूल स्थान है और नंदगांव बसा हुआ है और नंदगांव में भगवान कृष्ण बलराम लीला करते हैं गौचारण करते हैं काउ हर्डिंग पास टाइम्स तो यहां पर जो एक जगह है उसका नाम है पेड़ कदम 2 मिनट का अंतर है यहाँ पर बड़ा कदम का पेड़ है किस कदम के पेड़ पर चढ़कर कृष्ण भगवान गाय को बुलाते हैं कदम चढ़ गाय बुलावत काना सबसे ऊपर जाके बैठते हैं और मुरली बजाते हैं और जब छठवा स्वर बजाते हैं तो मुरली के तान में हर गाय को अपना अपना नाम सुनाई पड़ता है When he plays 6 notes, each cow hears her name in that sound, as if he is only calling her. जैसे राज में रास लीला में जब नाच करते हैं तो हर एक गोपी को लगता है कि केवल उनके साथ नाच कर रहे हैं He is only with her. जैसे ही यहां पर जब मुरली बजाते हैं तो हर गाय को लगता है कि केवल उसी के लिए धुन बजाई जा रही है उसी को बुलाया जा रहा है ये सब लीला कब की है जब वो दिन भर गाय चराकर जब शाम को लौट के आते हैं तो शाम को घर जाने के पहले यहां पर चढ़कर सभी गायों को बुलाते हैं और जैसे ही धुन बजती है आवाज सुनाई पड़ता है सभी गाय कान ऊपर करके पूंछ को ऊपर उठा के भाग भाग के ऐसे आंखें करके इस पेड़ के नीचे आ जाते हैं ऐसे एकदम चित्रपट की तरह उस अमृत को जो मुरली से धुन के रूप में आ रहा है उसको कान से पीते रहते हैं ऐसे कहा गया कि वो स्तंभ की तरह मतलब चित्रपट की तरह बन जाते हैं दे बिकम लाइक अ पिक्चर मोशनलेस स्टंड बड़ी बड़ी आंखें करके कृष्ण को देखते हैं दर्शन करते हैं और कान से मुरली की आवाज सुनते हैं पूंछ भी ऊपर है कान भी ऊपर है और एकांत में ऐसे अकेले खड़े हैं सुन रहे हैं कुछ गाय ऐसी होती है जो उनको पुकार सुनने के बाद भी आती नहीं है जानबूझकर तो फिर ये पेड़ से उतरते हैं और जाकर वहां जहां गाय खड़ी है वहां से उसको हाथ हाथ लगाकर उसको खुद लेके आते हैं दीज गाइज दीज काउज दे वॉन्ट पर्सनल अटेंशन So Krishna also fulfills their desire. He goes and personally brings them with love back home. फिर सब लोग सब गाय ग्वाल बाल सब इकट्ठा होकर यहाँ से फिर गीत गाते हुए यहाँ से नंद भवन चले जाते हैं। ऐसी सुंदर लीला है यहाँ पर। विशेष लीला गोपाष्टमी की है, जब भगवान छोटे साल छोटे उम्र के थे तब वो भगवान को नंद महाराज ने छोटी गाय का दिया भार, बेबी काउस, ही गेव देम बेबी काउस। तो वो पास पास में ही गाय चराते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भगवान 5 साल के हो गए और सब ग्वाल बालों ने उनको बहुत चिढ़ाया, अरे तुम 5 साल के हो गए फिर भी तुमको नंद बाबा पे, नंद बाबा को तुम पर विश्वास नहीं है, वो इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम बड़ी गाय को चरा सकते हो, इसलिए अभी बच्चों को ही तुमको दे रहे हैं। बहुत उनको चिढ़ाया और कृष्णा को बहुत दुख हुआ, अरे मेरे बाबा मुझे बड़ी गाय चराने को देते नहीं है। तो उस दिन ना वो बहुत दुखी होकर घर पे आए, और हम तो अभी जब गाय चरा के बच्चे को लेके आते ना घर पे तो उनकी आरती होती है, गीत गाते हैं, नृत्य होता है, मिठाई खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, स्नान करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, फिर लोरी गाते हैं, ललबाई वो गा के उनको सुला देते हैं। आज के दिन क्या हुआ, इतना रूट के आए सीधा जाके बिस्तर पे उल्टा मुंह करके सो गए। बच्चे होते ना उल्टा मुंह अंदर करके सो जाते हैं, किसी को बात नहीं करते, कोई लोरी नहीं, कोई गीत नहीं, कोई गायन नहीं, कोई मक्खन नहीं, कुछ नहीं, सो जाते। सुबह को फिर वापस गीत गाकर माता जी उठाने को प्रयास करती है तो वो उठता ही नहीं है, तो उनको उठना नहीं है, बहुत गुस्से में। हुआ ये कि जब वो वहां पर जंगल में बातें ग्वाल बालों की हो रही थी कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे भगवान को नंद महाराज को भरोसा नहीं है, उसी समय घर पे चर्चा हो रही थी नंद बाबा और यशोदा के बीच में कि हमारा कान्हा जो है ना अभी बड़ा हो गया है, उसको अभी हम बड़ी गाय दे सकते हैं चलाने के लिए। तो वो एग्री हो जाते हैं, बोले हाँ अभी कल से हम उनको दे देंगे। तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, रूट रूट के आकर बैठे, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। सुबह भी माता गीत गा रही है, यहां से इस कान में बोल रही है तो वो उधर मुंह कर देते हैं, यहां से आके उनको जगा देते उधर मुंह करते, मतलब ऐसा है ना कि जो सोता है ना उसको हम जगा सकते हैं, जो सोने का बहाना कर रहा है उसको जगा सकते हैं। वन हु इज स्लीपिंग वी कैन वेक अप, बट वन हु इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप यू कैन नॉट वेक मी अप, वेक हिम अप, डजंट वांट टू गेट अप। तो उस तरह से बहुत देर तक कोशिश किया माता ने, फिर बोला अरे कन्हैया तुमको आज बड़ी गाय देनी है चराने के लिए, तो झट से उठ गए एकदम फटाफट तैयार हो गए। फिर उसने में जब ये गाना गा रहे थे उठाने का प्रयास कर रहे, सभी ग्वाल बाल तैयार होके भी आ गए सज सज के गाय को लेके, लेकिन ये उनको खबर मिल गई थी कि अभी कल से बड़ी भाई गाय मिलने वाली है इनको चराने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं ऐसे उठे नहीं थे, लेट हो गया। फिर जल्दी जल्दी उठ गए, तैयार हो गए, श्रृंगार हो गया। तो माता दो जोड़ी जूता और 2 छतरी लेके आई, बोले को कृष्ण बलराम अभी तुम दूर जाओगे ना, गाय बड़ी गाय तो दूर चढ़ती है, बहुत छोटी गाय तो पास पास चढ़ती है, दूर दूर वन में जाओगे, जंगल में जाओगे, वहां पर धूप रहेगी, वहां पर बहुत सारे कंकड़ रहेंगे, कांटे रहेंगे, पत्थर रहेंगे, इसलिए तुमको जूता पहनना है, ये तो जोड़ी तुम्हारे लिए कृष्ण बलराम के लिए है, इसको पहनाओ और छतरी भी ले लो और जाओ गाय चराने के लिए। तो भगवान हमारे बड़े अजीब है, बड़े विचित्र है भगवान, वो कहते हैं कि हमारे सब गाय के लिए छतरी है क्या आपके पास, हमारी गाय भी जाएगा हमारे साथ में, अरे हम अकेले जाएंगे, तो आपको 18 लाख जोड़ी जूता और 9 लाख छतरी लाना पड़ेगा। 18 लाख क्यों, गाय के कितने पैर होते हैं, 4, जूता कितना जोड़ी पहनते हैं वो, 2 जोड़ी, एक गाय को 2 जोड़ी जूता, 2 pairs of shoes फॉर 1 cow, सो टोटल 18 lakh pairs of shoes और टोटल 9 lakh umbrella। तो मैया कहती है मेरे पास इतने जूता भी नहीं है, इतना जो अम्ब्रेला भी नहीं है, अरे भूल गया है बात, बता भूल गया, बोले 9 lakh सर्वेंट भी चाहिए, गाय को हाथ है पकड़ने के लिए, तो 9 lakh सर्वेंट चाहिए, एक एक गाय को एक छतरी पकड़ने के लिए, सर चलेंगे उसके बाद। तो मैया बोली मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आई डोंट हैव अरेंजमेंट, ऑफ सो मेनी मटेरियल्स विथ यू. तो ही सेज कि मुझे आपकी छतरी और जूता नहीं चाहिए. अगर मेरी गाय नंगा पैर चलेगी और धूप में चलेगी तो मैं भी धूप में चलूंगा और नंगे पैर चलूंगा. और गाय सुन रहे सब लोग, अरे कृष्ण भगवान नंगे पैर चलेंगे, जंगल में कांटे होते, पत्थर होते, कंकड़ होते, क्या क्या होता है, इनके मक्खन जैसे मुलायम पाव जो है उसको अगर पत्थर लग भी गया तो खून आ जाएगा, तो कैसे होगा. तो जब चर्चा हो रही इनकी, सारी गाय भाग जाती है चारों दिशा में, तो सारे अपने पांव से पत्थर को, कंकड़ को, कांटों को कूट कूट कर, कूट कूट कर एकदम मुलायम बना देते हैं सब
जगह.
जितना पत्थर जितना है सब कुछ है, एकदम मुलायम मक्खन जैसा बना देते, ब्रज रज एकदम महीन एकदम फाइन
जमसंग पाउडर.
हाँ, फिर आ जाते हैं खड़े थे सब दिशा में. क्यों करते हैं कि पता नहीं कौन सी दिशा में जाएंगे, विच डायरेक्शन ही विल गो, नो गारंटी. सो विच एवर डायरेक्शन ही डिजायर्स टू गो, दैट डायरेक्शन मस्ट बी हैविंग वेरी फाइन बटर लाइक सॉफ्ट कूल मक्खन द रज द डस्ट. ये ब्रज रज का और एक महत्व ऐसा है कि एक तो मुलायम होती है, बहुत मुलायम होती है, और जितनी भी गायें हैं ब्रज में वो हमेशा कृष्ण के प्रेम में एकदम व्याकुल रहती है. और आप जानते हैं ना, जब माता जिसको नया नया बच्चा हो गया है तो जब वो कहीं निकल जाती है काम में मार्केट में और उसको बच्चे की याद आती है तो उसके ब्रेस्ट में से दूध निकलता है, याद से ही निकल, है ना, आपने अनुभव किया है कभी. कुछ लोग नौकरी करते हैं और बच्चे को घर छोड़ते हैं क्रेश में, और दोपहर में जब दूध पीने का समय होता है तो माता को बच्चे की याद आती है, तो याद आने से अपने आप ही उनके ब्रेस्ट में से स्तनों में दूध निकलता है. केवल याद करने से, प्रेम का प्रतीक है वो, प्रेम विथ ओनली लव मिल्क कैन कम. हमने तो ऐसा अनुभव किया है, मैं जब ऋषिकेश में था एक सन्यासी थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी माता और दादी दोनों का दूध पिया है. अरे दादी के भी उस बच्चे हो रहे थे का समय, नहीं नहीं, केवल प्रेम के कारण दादी के स्तन से भी दूध निकल रहा था और माता के स्तन से भी दूध निकल रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ लव. द ग्रैंड मदर ऑल्सो वॉज प्रोड्यूसिंग मिल्क फ्रॉम हर ब्रेस्ट, ऑल्दो शी डिडंट हैव चाइल्ड. तो प्रेम जो है ना सबसे बहुत पावरफुल चीज है.
एक बात आपका इसके चित्र में आपके सुना रहा हूँ,
एक मिनट रुको, एक बात में सुना.
नित्यानंद प्रभु को जब दिया देवी के उस समय 85 साल उम्र.
हाँ बता रहा हूँ, मेरा लिंक टूट जाएगा फिर आप बीच में बोलेंगे. तो मैं क्या कह रहा था, तो प्रेम की वजह से माता के स्तनों से दूध निकलता है, वैसे ही गाय भी वैसे ही है, वो दिन भर कृष्ण की याद करती रहती. गाय की आंखें भी अश्रु से भरी रहती, हमेशा प्रेम के अश्रु से भरी रहती. यशोदा माई और गाय सब जितने भी थे उनके आंखों से कभी अश्रु बंद ही नहीं हुए, प्रेम के अश्रु भरे रहते हमेशा, कृष्ण के प्रेम में हमेशा अश्रु भरे रहते. तो वो गाय भी भगवान की याद रखे, हरे कृष्णा डोंट स्लीप, भगवान तो दूध पिलाया जा रहा है, डोंट स्लीप. तो गाय जब चरती है तो भगवान की याद करते, तो गाय के थनों थन जो ना गाय के इतने बड़े बड़े जमीन को टच करते हो, इतने बड़े, उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप दूध निकलते रहता है कॉन्स्टेंटली. और लाखों लाखों गाय हैं ब्रज के अंदर, सभी जब विहार करती हैं चलती हैं तो अपना दूध ड्रॉप 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 छोड़ते जाती है भगवान की याद में. तो ये जो डस्ट है वो कैसी है, मक्खन की तरह मुलायम है, उसके ऊपर दूध की धार लग रही है. हा? तो कैसा है, ठंडा मुलायम और मक्खन के जैसा. जब चलेंगे तो इतना आनंद आएगा भगवान को, कृष्ण भगवान को, बलराम जी को. और जब वो निकल रहे थे वहां से तो पूरा ब्रजभूमि ऑलरेडी दूध से फुव्वारा मार के रेडी था, तो होल ब्रजभूमि वॉज रेडी विथ ऑल द स्प्रे ऑफ द मिल्क एंड द फाइननेस ऑफ द डस्ट लाइक बटर, इट वॉज अवेलेबल रेडी. और जब चलने का शुरुआत हुआ उसके पहले ही सब ग्वाल बाल और सब गाय मिलकर उन्होंने मीटिंग किया और डिस्कशन किया और एक रिजॉल्व उन्होंने एक निर्णय लिया कि जब कृष्ण भगवान और बलराम जी चलेंगे सबसे आगे चलेंगे वो, उनके दो दो चरण के चिन्ह जो हैं इतने मुलायम है तो चरण चिन्ह आएंगे ना उनके, तो कोई भी उनके चरण चिन्हों पर कदम रखेगा नहीं, ऐसे उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो सारी ब्रजभूमि जो है इनके चरण चिन्हों के अलंकार से सुशोभित हो गई बिकॉज ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्णा एंड बलराम काउज एंड द कावर्ड बॉयज रिजॉल्व दैट वी विल नॉट स्टेप ऑन दिस फुटप्रिंट्स, दे विल वॉक इन फ्रंट एंड विल नॉट स्टेप ऑन द फुटप्रिंट्स, एंड दिस वे द होल ब्रजभूमि वॉज फिल्ड विद द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लोटस फुटप्रिंट्स डिवाइन फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्णा एंड बलराम। ये कैसे हो सकता है आज तक मेरे समझ में नहीं आया, आई हैवंट अंडरस्टूड अप टिल टुडे हाउ इट इज पॉसिबल। आप सोच सकते हैं एक अकेले कृष्ण की नंद बाबा की 9 लाख गाय थी और बाकी भी सबकी गाय थी ना, पूरे अकेले उनकी थी, बाकी लोगों भी लाखों लाखों गाय थी और जितनी गाय थी उतने बच्चे भी थे ग्वाल बाल। अभी आप सोचो कृष्ण भगवान की बलराम जी की 9 लाख गाय, फिर बाकी दोस्त लोगों के दोस्त भी हजारों लाखों करोड़ों दोस्त लोग हैं उनके, उनकी सब गायें और कृष्ण बलराम आगे चल रहे हैं और सब ये करोड़ों लोग पीछे चल रहे हैं और कोई भी कृष्ण भगवान और बलराम जी के चरणों के चिन्हों पर पाम नहीं दे रहा है, काउज ऑल्सो और ग्वाल बाल ऑल्सो, इज नॉट वेरी वंडरफुल। ये समझने के लिए गौलोक जाना पड़ेगा कैसे हो सकता है हाउ इट इज पॉसिबल। आपको बताया जाए कि किसी का नाम बताएंगे अरे इसके फुटप्रिंट पर आपको पांव रखना नहीं है और यात्रा करनी है आपको पूरी वृंदावन की नंदगांव की, कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ये भगवान की लीला है। और ये चरण चिन्ह जो है यही ये ब्रजभूमि का अलंकार है, ऑर्नामेंट ऑफ ब्रजभूमि, और इसी को सब ब्रजवासी जो है वंदन करते रहते, इसलिए भूमि पावन है क्योंकि भगवान के नंगे पैर के चरण चिन्हों से ये पावन हो गई है। यही ब्रजभूमि का आनंद है, भगवान के चरण कमल वो अपने सर पर धारण करती है। अक्रूर जी जब आए ना वहां से मथुरा से कृष्ण को लेने के लिए कंस के आदेश से, तो जैसे वृंदावन के बॉर्डर में आए वो, तो उनको ये चरण चिन्ह दिखाए पड़े जो बनाए रखे थे, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही वो ब्रज के बॉर्डर में आए तो रथ से उतर गए, वो अपना जूता भी उतार दिया उन्होंने और तुरंत वो चरण चिन्ह के ऊपर वो लोटपोट हो गए। ही रोल्ड अक्रूर रोल्ड इन द डस्ट विच वॉज फिल्ड विद द फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्ण एंड बलराम, ही रोल्ड हिमसेल्फ। एंड रूपा जी एक्सप्लेन्स that this is how one should enter Vrindavan, by rolling in the dust of Brajbhumi, where it is decorated with Radha Krishna and Krishna Balram's lotus footprints. तो फिर सब लोग चले, कृष्ण बलराम गायों को लेकर सब लोग चरण चिन्हों को संभालते हुए चलते रहे। और फर्स्ट डे था ना वो, अब तक तो कृष्ण भगवान को बलराम जी को पास पास जाने की अभी आदत थी ना, they were habituated to go very close by. और दोपहर को लंच को घर के आते, घर पे आते थे फिर जाते थे बाहर। अभी तो सुबह जाएंगे और शाम को लौट के आएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो बीच में माता कहती है कि अरे दूर जाएंगे तो घर पे लंच के लिए नहीं आएंगे ना, तो हम लोग यहां से लंच भेजेंगे उनको। तो कुछ सखियां दोपहर को छाप बोलते, छाप सर पे छाप मतलब दोपहर का लंच लेकर जाती थी ढूंढने के लिए किस वन में लीला कर रहे हैं, उस वन में जाकर छाप पहुंचाते थे और बहुत सारा लीला देखते हुए वापस लौट के आते थे। उसके बाद शाम को ये लौट के आते थे। तो फर्स्ट टाइम जब शाम को लौट के आए ना, लौट के आ रहे थे, तब कृष्ण भगवान थक गए, बहुत थक गए। तो ग्वाल बालों की इच्छा थी कि इनके साथ दूर दूर जाने का आनंद मिलना चाहिए, और वो थके हुए लौट के आएंगे तो मैया बोले कि नहीं नहीं बाबा हमारा गाना थक गया है, अभी कल से नहीं भेजेंगे उसको। तो उनके सामने जब पहुंचेंगे तो थका हुआ दर्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जब पास में आते ना ब्रज के इधर नंदगांव के, तो जोक मारना शुरू कर देते हैं, जोक बोलने लगते हैं, गीत गाते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदी करते हैं, उनको बहुत हंसाते हैं, उनको बहुत हंसाते हैं। तो जब पास में आते हैं तो नंद बाबा यशोदा मैया दूर से देख रहे हैं, अरे कहना आ रहा है, अरे हंस हंस के आ रहा है। हाँ, तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं। बार बार बहुत चतुर हैं, सब जानते हैं क्या सोचते होंगे माता, आगे परिणाम क्या होगा। मगर वो थके हुए आएंगे तो बोलेंगे नहीं अभी कल छुट्टी कर लो, कल नहीं भेजेंगे, मैया भेजो ना नहीं परसों भेजेंगे, ऐसे बोलेंगे ना। उनको रोज चलना है, दूर दूर जाकर ग्वाल बाल गयो चारण का आनंद लेना चाहते हैं। तो जब पहले दिन लौट के आए तो यहां पर बैठ के फिर पहली बार चढ़े हैं वो उस दिन इस पर्वत पर, सब गायों को बुलाने के लिए। कदम्ब चढ़ गाय गुलावत कान, कृष्ण भगवान कदम पर चढ़कर बंसी बजाकर सब गायों को बुला रहे हैं। हाँ, कोई गाय, भगवान गाय कैसी है? 108 झुंड है उनका गाय का, 108 ग्रुप सब काउस, उसमें भूरी धूरी हाँ कामरी, मतलब कोई गोरी रंग की है, कोई काले रंग की है, कोई भूरे रंग की है, समार व्हाइट कलर, समार ब्राउन कलर, समार ब्लैक कलर, समार विद तिलक ऑन द फोरहेड, तिलकिनी, समार विद ब्लैक डॉट्स ऑन व्हाइट बॉडी, समार विद ब्लैक डॉट्स ऑन व्हाइट बॉडी, समार व्हाइट डॉट्स ऑन ब्लैक बॉडी, समार ऑन व्हाइट डॉट्स ऑन ब्राउन बॉडी, एंड देर आर समार मेनी 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 मेनी, कुछ येलो कलर काउज है, कुछ पीली है, कुछ हरी रंग की है, कुछ सब सब गुलाबी रंग की है। हर प्रकार की गाय के ऐसे अलग अलग वर्ण हैं, और सभी गायों को वो अपने मुरली से नाम से पुकारते हैं, हर एक गाय का नाम है। कल वो हमारे पीटर बरवास जी आए थे, गौशाला में गए थे, तो वहां पर 20,000 गाय थी, तो उन्होंने पूछा कि आप सब गाय का नाम याद रखते क्या? नहीं रखते, ओनली कृष्णा कैन रिमेम्बर ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द काउज। भगवान बड़े अद्भुत है हमारे, हर जीव के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। ही कीप्स मोस्ट पर्सनल रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, द काउज एंड पीकॉक्स, इवन द ब्लेड ऑफ ग्रास, इवन तृण के पत्ते के साथ भी उनका रिश्ता है। जब जमीन पर पांव रखते हैं तो हर तृण के पत्ते के बारे में सोचते हैं कि मेरे चरण कमल से उसको आनंद दूंगा मैं, और वो तृण का पत्ता जब वो सोचता है कि मैं इतना मुलायम बनूंगा कि भगवान के चरण कमल को आनंद मिलेगा, आई विल बिकम सो सॉफ्ट दैट कृष्णा लोटस फिट विल बी हैविंग ग्रेट प्लेजर बाय वॉकिंग अपॉन मी। सब पंछी आवाज करेंगे तो हर एक पंछी के आवाज में भगवान आवाज निकालेंगे। ग्वाल बाल क्या बोलेंगे? अरे भगवान तो मजाक कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जितने पंछी आवाज दे रहे हैं वो उनको पुकार रहे हैं, और भगवान उनकी आवाज में उनको रिस्पांस दे रहे हैं। जब भगवान ताल वन में प्रवेश कर रहे थे गौचारण करते हुए, तो ग्वाल बालों ने कहा कि ताल वन में ना एक राक्षस है धेनुकार सुनाम का, और अच्छे अच्छे ताल के उधर फ्रूट्स हैं, ताड़गोड़ा, वहां पर ताड़गोड़ा का झाड़ है, और उसकी खुशबू से हम लोग यहां पर इनको भूख लगती है, लेकिन राक्षस के भय से हम लोग जा सकते नहीं उसके अंदर। तो भगवान बलराम कृष्ण कहते हैं हम चलेंगे वहां पर, डोंट वरी, हम लोग लेके जाएंगे। तो तालवन के रास्ते पर कृष्ण भगवान जो है वो ये सब लीला कर रहे हैं, बच्ची गा रहे हैं, कृष्ण भगवान गा रहे हैं, हर एक जीव को रिस्पांस दे रहे हैं। और पंच पेड़ जो है ना, जब कृष्ण भगवान चल रहे हैं तो कुछ पेड़ झुक जाते हैं उनके चरणों में वंदन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बलराम जी देखो देखो ये वृक्ष जो है ना महान ऋषि लोग हैं, ये अपना फल लेकर आपको दंडवत करने के लिए झुक रहे हैं आपके चरणों के पास, ये आपके लिए प्रणाम दंडवत कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कितने भी लाखों गाय होंगे, कितने भी करोड़ों ग्वाल बाल होंगे, हर एक के साथ भगवान का प्रेम का रिश्ता इंडिविजुअल, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हमारा अगर 100 मित्र होंगे तो भी 2-4 लोग नाराज हो जाएंगे हमारे पर कि आप तो मिलते ही नहीं, वो फोन ही नहीं करते, लेकिन भगवान के अनंत जीव हैं और सबके साथ भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में साथ देते हैं उनको, सबके मित्र है वो। सूरदम सर्वभूतानाम, ये उनका वर्णन है, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। अगर आप गंदी नाली का कीड़ा भी बन जाओगे ना तो भी आपके हृदय में परमात्मा के रूप में साथ देंगे वो। इमेजिन, हम लोग उनको छोड़कर उनसे विद्रोह करके जन्म लेंगे, यहां पे आके पाप करेंगे, फिर हम लोग कीड़ा मकोड़ा बनते जाएंगे, कोई लैटरिन में कीड़ा बनेगा, कोई किधर कीड़ा बनेगा, कोई पेट में कीड़ा बनेगा, उसके भी अंदर भगवान उसको बचाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा बन के उसके अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग कहां कहां जन्म लेते हैं, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई भारत में, कोई बिहार में, कोई पटना में, मुंबई में, सबके जीवन में आके बैठते हैं वो। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं, सबको गाइड करता हूं वहां जाना है। कोई भी गलत काम करने के पहले मन में विचार तो आता है कि गलत है ये, आप भी करता है बात भी, लेकिन वो अंदर से आवाज आती है गलत काम है, वो परमात्मा की आवाज है, उसको सुनेंगे तो जीवन यशस्वी हो जाएगा, नहीं सुनेंगे बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने के बाद भी वो साथ देते हैं। जब तक जीव उनकी ओर वापस मुड़कर देखता नहीं है और उनके रास्ते में भजन करते हुए चलता नहीं है, तब तक वो उसको गाइड करते रहते हैं, साथ चलते रहते हैं, गंदगी में, अच्छी जगह पर, सब जगह पर, अच्छे शरीर में, गलत शरीर में, अच्छे जन्म में, बुरे जन्म में, सब जगह पर, अच्छे योनि में, सब जगह साथ देते हैं। ऐसे हमारे भगवान यहाँ पर गौचारण करते हैं, बहुत सुंदर लीला स्थली है, चलेंगे वहां पर दर्शन करेंगे और भगवान को बुलाएंगे कि अभी हमारे हमको भी बुलाओ, हम भी आपके लिए व्याकुल हैं। लेकिन पता है आपको हकीकत क्या है? डू यू नो द रियलिटी? वी विल प्रे कृष्णा प्लीज कॉल अस ऑल्सो, वी ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू यू, बट एक्चुअली ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम इटर्नल टाइम। वो गौलोक से बंसुरी बजा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जैसे गाय को बुलाते ना, हम सबको बुला रहे हैं, कम 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 बैक टू माई होम, वाई आर यू लॉयटरिंग हियर एंड स्पॉइलिंग योर लाइफ, कम बैक टू गौलोका। लेकिन यहां पर देर इज सो मच ऑफ नॉइज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट वी कांट हियर द फ्लूट, सो मच ऑफ नॉइज। मुझे अभी हम कथा कर रहे हैं जो, और यहां पर बहुत भीड़ आती है, बहुत आवाज होता है, तो हमारी आवाज सुनानी नहीं पड़ेगी आपको, माइक खोए छोड़ी सुनानी नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि बाहर की आवाज ज्यादा है इसलिए सुनाई नहीं पड़ती है। जब बाहर की आवाज शांत हो जाएगी तो अंदर की आवाज सुनाई पड़ेगी, है ना। जब इंद्रियों के भोगों का नॉइज खत्म हो जाएगा ना, तभी वो बंसी सुनाई पड़ेगी, तब हम जाएंगे उसके पीछे पीछे। सो व्हेन वी विल मेक द नॉइज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन क्वाइट एंड निल, देन यू विल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ कृष्णा फ्लूट दैट इज कॉलिंग यू, प्लीज कम बैक होम। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में इंद्रिय भोगों का जो नॉइज है ना, शोर मच रहा है यहां पर, वो शांत होने दो जरा, भगवान हमसे कृपा करना, हमारी इंद्रियों को शांत कर देना, ताकि वो इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाएंगी तो फिर आपकी आवाज, आपकी पुकार को सुनाई पड़ेगी, और हम सब वो गाय की तरह पागल होकर, पूंछ उठाकर, कान उठाकर, पागल होकर उनके आवाज सुनने के लिए व्याकुल रहेंगे, भाग के जाएंगे कृष्ण भगवान के पास। एक लीला है गोचारण की, सब गाय बनो और भगवान के पीछे भागो, भगवान को दूध पिलाओ प्रेम का।
हरी बोल,
जय जय
श्री राधे श्याम।
थैंक यू वेरी मच। हरी बोल।